ولقد آتينا موسى الكتاب. البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فیہ، تو اختلاف کیا گیا اس میں، کیا اختلاف کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، کچھ نہیں مانا اس کو اور کچھ نہیں مانا ہی نہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن مقرر کیا گا، وہ ہماری طرح اللہ تعالیٰ جذباتی فیصلے نہیں کرتا کہ جذبات میں آئے تو اٹھا کے کسی چیز کو توڑ پھوڑ دیا، جذبات میں آئے تو گلے سے لگا لیا، ایسے نہیں. اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ ہوتا ہے، حق پہ پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اگر یہ بات نہ گزر چکی ہوتی کہ اس نے ایک فیصلے کا وقت مقرر کیا ہے، تو ان کو دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا، نپٹا دیا جاتا ان کو. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور البتہ شک میں ہے یہ اس کی طرف سے بے چین کرنے والے. مین ہوں کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف، ہوں کی زمین کس طرف جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی طرف جا رہی ہو، کہ یہ اس قرآن میں شک کرنے والے ہیں، اس میں ابھی شک کرتے ہیں. جیسے انہوں نے تورات میں شک کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں شک میں ہو. یہ ایک دن تو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ تو اس میں شک میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ہی اہم آیت، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سب کے سب، البتہ جو، البتہ ضرور، کتنی دفعہ تاکید آ گئی، اِنَّ لَمَّا لَا مُشَدَّد، یہاں پہ سات تاکیدیں، اِنَّا بھی ہے، لَمَّا بھی ہے، لَا بھی ہے، مُشَدَّد بھی ہے، اور کچھ تاکیدیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں اس کے بعد جو بات کہی جائے، ماں بچے کو کہتی ہے نا کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، کان کھول کے سن لو، میری بات اچھی طرح سنو، غور سے سنو، دیکھو میری طرف توجہ کرو، دھیان سے سن لو جو میں بات بتا رہی ہوں. تو کتنی دفعہ تاکید ہو گئی نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب بہت ہی اہم کوئی بات ہونے والی ہے، یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے. کیا یاد رکھنے والی بات ہے؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بے شک سب کے سب، البتہ جو، البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال، یعنی اعمال کی جزا. اس کے اوپر اتنی تاکید ہے کہ اعمال کی جزا ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، یعنی جو جو عمل آپ کرتے جائیں گے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے؟ ہر، خود سے پوچھیں، مجھے یقین ہے، چاہے وہ نیکی کا چاہے وہ برائی کا. نیکی کا نہیں یقین ہوتا، اسی لیے ہم لوگوں سے تعریفیں مانگتے ہیں، لوگوں سے ریوارڈ چاہتے ہیں، لوگوں سے شاباشی چاہتے ہیں. برائی کا بھی نہیں یہ یقین ہے کہ اس کا بدلہ ملے گا، اسی وجہ سے تو ہم دلیر ہو کے، شیر ہو کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کیا واقعی یقین ہے ہر چیز کا بدلہ ملنا؟ اگر یہ بات انسان مان جائے نا، ہر غلط کام پھر چھوڑ دے، اور اس کا ہر نیکی کا کام صرف اللہ کی خاطر ہو جائے، کتنی زیادہ شدید تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اسی لیے تو فرمایا نا، یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یوم اذن یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کوئی کام لے کر آیا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر بھی شر لے کر آیا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، وہ بھی اس کا پا لے گا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو کہ انڈے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا वो भी उतनी तुलेगा। जूं का अंडा देखा आपने, इतना बारीक होता है ना, उसके बराबर भी अमल होगा, वो भी तोला जाएगा उस दिन और उसका बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला देंगे बदला, लेकिन हमारे दिलों को ये यकीन हो जाए कि वाकई बदला मिलने वाला है। इन्नहु बिमा यअमलूना खबीर, और बेशक वो साथ जो वो अमल करते हैं बाखबर है, वो बाखबर है तभी तो बदला देगा ना। अगर उसको खबर ना होती तो फिर बदला कैसे देता। इसीलिए तो छुपे हुए अमल भी निकाल के ले आया जाएंगे ना। ये जो इंसान ने छुपके किए, तन्हाइयों में किए, अकेले में किए, वो भी लाए जाएंगे, अंधेरे में किए वो भी लाए जाएंगे, क्योंकि वो जानता है जो भी तुम करते हो। जब इंसान किसी के साथ हकूक का मामला हो, इंसानों का इंसानों के साथ मामला हो, या इंसानों का रब के साथ मामला हो, इन सारे मामलात में अगर उसको ये बात याद रहे कि मेरे हर अमल का बदला मुझे जरूर जरूर मिलने वाला है, तो बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है। क्या हम बुराई करते हुए सोचते हैं इसका बदला मुझे मिलेगा, कभी भी ये ख्याल ही नहीं आता, भूले रहते हैं ना। एक एक कदम पे पता चले आपको कि ये जो कदम मेरा मस्जिद की तरफ उठ रहा है इसका भी मुझे बदला मिलना। अच्छा, ये मैंने नजर उठा के जो देखा इस नजर का भी मुझे बदला मिलेगा। फस्तकीम, बस कायम रहे, कमा उमेरता, जैसा कि तू हुक्म दिया गया है। ममता बमा कवला तत्व, और जो तेरे साथ भी है और जो तौबा करे तेरे साथ, जो पलट आए कुफर से, जैसे सहाबा कराम थे कुफर को छोड़ा ईमान की तरफ पलट आए, वो भी इस्तेकामत इख्तियार करे। इस्तेकामत का मतलब क्या होता है, यानी वो फर्म रहे, जमे रहे, स्ट्रांग रहे, किस पर, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके ऊपर स्ट्रांग रहे। और कौन रहे, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और दूसरे वो लोग जो आपके साथ हैं, जो ईमान लाए आपके साथ, यानी सहाबा कराम, वो भी स्ट्रांग रहे, वो भी जमे रहे, इधर उधर नहीं हो, इस्तकामत इख्तियार करें। और इस्तकामत का मतलब क्या होता है, इस्तकामत का माना होता है, एक तो माना है जैसे मैंने आपको बताया, जमे रहना, मजबूत रहना, जैसे जिसको आप कहते हैं बहुत डेडिकेटेड है, कमिटेड है, क्योंकि इसी से पता चलता है ना कि इंसान कितना सच्चा है अपनी बात में। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपसे कोई बात कर रहा है, कोई दावा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, कैसे पता चलेगा। इसी से पता चलेगा ना वो अपने काम में कितना डेडिकेटेड है, अब वो इसको कितना निभा रहा है। तो यही वाली बात यहाँ पे है, कही जा रही है कि इस्तकामत इख्तियार करो, कायम रहो, साबित कदम रहो, ना इधर हो ना उधर हो। और किस किस चीज में, हर चीज में इस्तकामत हो, हर बात में इस्तकामत हो, तुम्हारी तुम्हारे अकीदे में भी इस्तकामत हो, तुम्हारी इबादात में भी इस्तकामत हो, तुम्हारे जो मामलात हैं, जो तुम्हारा इखलाक है, जो तुम्हारी डीलिंग्स हैं, उन सब में इस्तकामत होनी चाहिए। अकायद में कैसे इस्तकामत होगी, इतनी समझने वाली बात है, इसलिए आप लोग तवज्जो करें कि अकीदे में इस्तकामत कैसे होगी। लेकिन इस्तकामत का मतलब ये भी होता है सीधा खड़े रहना, जरा सा भी ना इधर झुकना ना उधर झुकना, और ये काम कोई आसान काम तो नहीं है ना, ना इस तरफ को झुकाओ ना उत्तर को, ना आगे को ना पीछे को, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो अकेले में कैसे आप स्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि अगर अकेले में आप स्ट्रेट नहीं रहे तो बिदात से बात शुरू होती है और फिर कुफर तक चली जाती है। देखिए अगर आप अल्लाह ताला की तौहीद में हद से आगे बढ़ गए, इसमें कोई कमी बेशी कर दी, चाहे नेक नियत से इसे किए, तो फिर भी गुमराह कहलाएंगे। अंबिया के बारे में उनकी मोहब्बत में भी आप अगर हद क्रॉस कर गए, ज्यादा मोहब्बत में इतने आगे बढ़ गए कि उनको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया, या उनके अंदर भी ये कह दिया कि इनके अंदर भी खुदा जैसी सिफात है, ये भी अल्लाह की तरह ये भी बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी नबी है, तो तब भी शिर्क हो गया, गुमराही है। जैसे यहूदी नसारा उस गुमराही के अंदर पड़े, और अगर इससे पीछे हो जाए कि नहीं अंबिया तो कुछ भी नहीं थे और वो तो ऐसे ही थे बस, तो तब भी गलत है। इसलिए ना आगे होना है ना पीछे होना है, बिल्कुल स्ट्रेट जमे रहना। और आप देखेंगे कि जब अकीदे के अंदर भी इंसान किसी चीज में, यानी इसमें भी जब इंसान आगे हो जाता है, कई बिदात भी आ जाती है इसके अंदर। बिदात भी आप किस क्या समझ के करते हैं कि मैं अपने रब को राजी कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसके अंदर उसकी नाराजगी है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बिदात से और इससे बचने की बहुत ताकीद की थी, और इंसान पे लाजिम है कि जब भी वो कोई काम इबादत या अल्लाह रसूल की रजा के लिए करे, तो करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च कर ले कि ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से इस तरह से साबित है भी या नहीं है। अगर साबित नहीं है तो इसमें अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करें और अपनी एनर्जी भी नहीं जाया करें। इसी तरह मामलात में, इसी तरह अखलाक में, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी में तालीम के जरिए एक बिल्कुल मुंतजिम सा दरमियाना सा रास्ता आपको जो सही रास्ता है वो बताया, उसी पे चले। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तब भी आप गलत काम में पड़ जाते हैं, और पीछे होने लगे हो तब भी गलती हो जाती है, जिसमें सारी आप एस्पेक्ट दे सकते हैं, दोस्ती में, दुश्मनी में, नरमी गर्मी, गुस्सा, कंजूसी, सखावत, कमाई कमाना, इसमें सब में आप अगर ये वाकई देखें तो इन सब में एक रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बता दिया, और इन इसी रास्ते पर चलने से इंसान सही रहता है। इससे इधर उधर हटेगा तो कहीं और गिर जाएगा। तो इस्तकामत इख्तियार करनी है, और इस्तकामत जैसे मैंने आपको ये बताया, इस्तकामत का मतलब है यानी कमिटेड रहना। आप देखिए कि हम दुनियावी कामों में तो सारों में बड़े कमिटेड रहते हैं, यहाँ पे हमें पता होता है कि हमारी यहाँ पे मर्जी है, यहाँ पे हमें कोई फायदा मिलना है, ये चीज का हमें बड़ा शौक है, उसमें तो हमारी कमिटमेंट इंतहा की होती है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेना, आप जॉब करते हैं वर्किंग, कितने कमिटेड होते हैं, धूप हो या छाव, स्नो हो या तूफान, कुछ भी हो जॉब पे जा रहे हैं, पता है ये जॉब है, काम है, हमें करना है, क्यों, इसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा, ये है कमिटमेंट। इसी तरह पढ़ाई, शादियां आए, ब्याह आए, गम आए, घर में कोई परेशानी आ रही है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो कमिटेड होते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको नहीं परवाह होती क्या हमारे एजुकेट हो रहा, वो ही कामयाब होते हैं फिर। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो कि आज पढ़े कल नहीं पढ़, आज क्लास नहीं गया कल अगले दिन नहीं गया, आज जो मेरा मूड नहीं हो रहा मैंने नहीं जाना, तो वो कभी कामयाब हो सकता, नहीं उसका काम चल सकता, नहीं। लेकिन अगर हमारी दीन के साथ कमिटमेंट देखे ना, तो हमारी दीन के साथ कमिटमेंट ऐसी ही है, जब मर्जी आई कर लिया, मर्जी आई नमाज पढ़ी, पढ़ी नहीं पढ़ी भी तो आज थक गए रहने गए चलो छोड़ो, कजा कर लिख के पढ़ लेंगे, इतना भी क्या है, दीन में कोई सख्ती नहीं है, नो कमिटमेंट। आज नींद ज्यादा आ रही है, रात को भी मैं देर से सोई थी तो चलो छोड़ो फजर बाद में पढ़ लूंगी, उठ के पढ़ लूंगी, नो कमिटमेंट। कुरान की तालीम को देखें, जब मेरा दिल चाहे मैं सबक याद करूंगी, जब दिल चाहेगा टेस्ट दूंगी, जब दिल चाहेगा क्लास में आऊंगी, नहीं भी आऊंगी तो मेरा कौन कोई कुछ बिगाड़ सकता, نو کمٹمنٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات میرے سامنے آئیں گے, جو دل چاہے گا مانوں گی, جو نہیں دل چاہتا وہ جو بھائی مجھے مشکل لگتا ہے تو میں بھی یہ مان سکتی. نو کمٹمنٹ. دین کے معاملے میں ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, کوئی استقامت ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو جم کے چلنے والے ہیں, فرم ہوتے ہیں. پہاڑ ہل جائے اپنی جگہ سے, وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. کتنی باتیں سننی پڑی, کتنے ہی طوفان آندھیاں آئیں, ان کو نہیں ہلا سکتے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا, پس پسند جمے رہو, تم ہلنا نہیں ہے, تم نے کمیٹڈ رہو. ہماری کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے, الٹ کرتے ہیں ہم. لیکن جس چیز کے ساتھ آپ کی صحیح کمٹمنٹ نہیں ہوتی نا, اس چیز کے پھر آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. پڑھائی میں اگر بچہ کمٹمنٹ سے نہ ہو, کمٹڈ نہ ہو اپنی پڑھائی سے, کبھی بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بس کیا ایسی بات ہے کہ ہم دنیا کے سارے کاموں میں کمٹڈ ہوتے ہیں مگر اپنے دین کے معاملے میں ہم کمٹڈ نہیں ہیں. اس لیے یہ کہا گیا, قائم رہو, کمٹڈ رہو, یوں رہو. جس میں جمنا ہمیں مشکل لگتا ہے, حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حکم, بلکہ جو بھی توبہ کریں آپ کے ساتھ, یعنی جو بھی پلٹ کے آئیں, جو ایمان کی طرف آ جائیں, جو اللہ کی طرف آ جائیں, ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی فاستقم, جم کے رہیں. اور کیا کریں, ولا تطغوا, اور نہ تم سرکشی کرو, نہ تم حد سے بڑھو. یعنی جب آپ دین کے راستے پہ کمیٹڈ ہوتے ہیں, ایک تو مطلب یہ ہو گیا نا اس کا کہ انسان کی مخالفتیں بہت ہوتی ہیں, ایسے میں انسان جو مخالف ہیں وہ جیسا بھی سلوک کرتے ہیں, جیسی بھی دشمنی کرتے ہیں, جیسی بھی مخالفت کرتے ہیں, ان کو ویسا ہی ریئیکشن, ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ نہ کرے. تم نہ حد سے بڑھو, وہ حد سے بڑھتے بھی ہیں تو تم نے بھی حدوں سے نکلنا. اور یہ تتوا جو ہے نا, یہ الٹ ہے استقامت کا, وہ ہے جمنا, یہ ہے حد سے نکل جانا. اور دوسری طریقے سے آپ اگر دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو استقامت کا بتایا کہ عقیدے میں بھی استقامت ہونی چاہیے, سب عبادت میں بھی, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, ہر چیز میں. تو اب کیا کہا جا رہا ہے, پہلے کہا استقامت کرو, اب کہا جا رہا ہے اب حد سے نہ گزرنا. استقامت کا حکم دیا گیا اور حد سے گزرنے سے تب وہ سے منع کیا گیا. کہ اللہ کی مقرر کردہ حد جو ہے, لمٹس ہیں, ان کو کراس نہ کرو. اور یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی بھاری گزری تھی. جیسے آپ کو بتایا نا میں نے کہ یہ سورت جو ہے, اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوا کر دیا اور اس جیسی سورتوں نے. تو اس کے اندر سے بھی ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اس کا سبب تھی. کیونکہ جب استقامت ہے نا, تو دیکھیں ایک بے جان چیز کو تو آپ سیدھا کھڑا کرتے ہیں, اس کو ایک جگہ پہ جما دیں, قائم کر دیں, وہ آسان کام ہے. لیکن انسان جیسی مخلوق, جس کا اپنا دماغ بھی ہے, اپنا نفس بھی ہے, اپنی خواہشات بھی ہیں, اور پھر ادھر ادھر کی اس کے ارد گرد کا ماحول بھی ہے, اور پھر جو برائی کی طرف کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں, تو ایسے ماحول, ایسے حالات میں ہوتے ہوئے اس کا استقامت پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کی فکر تھی کہ وہ کیسے استقامت اختیار کریں گے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے سب سے جمنا ہے, یہ کہا گیا نا, کما عمر تھا, جیسا کہ حکم دیا گیا, جیسا کہ حق کے جمنے کا اس طرح سے جمنا چاہیے. تو یہ بھی اس کا سبب بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان تھے کہ جو حق ہے, جیسا حق ہے جمنے کا, ویسا جم سکیں گے یا نہیں. جیسی اللہ تعالیٰ کو چاہیے استقامت ویسی ہو سکے گی یا نہیں. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور بے شک وہ تمہارے جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا, وہ خود واچ کر رہا ہے تمہارے ہر عمل کو. تو آپ دیکھیں کسی بھی کام میں کامیابی کی جو کی ہے نا کی, وہ ہے کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن. تو اگر آپ دین میں کامیابی چاہتے ہیں کمیٹڈ ہو, ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کے لیے, کبھی کبھار کر لینا جب موڈ آیا, جب مرضی آئی, جب دل چاہا, جب آسان لگا تب کر لینا, وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. نہ تم جھکو, نہ تم مائل ہو, نہ تم انکلائن ہو, کن کی طرف؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظالم لوگ ہیں, چاہے آپ کے رشتے دار ہیں, چاہے دوست ہیں, چاہے کتنے ہی قریبی ہیں تعلق میں, ان کی طرف نہیں جھکنا. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا, ظلم کرنا تو دور کی بات ہے, ایسے لوگوں کی طرف جھکنا بھی نہیں ہے. جھکنے سے مراد یہاں پہ کیا, ترکنو سے مراد کیا, ترکنو اصل میں ہوتا ہے کسی کی طرف نہ تھوڑا سا بھی میلان, تھوڑا سا بھی جھکاؤ, اس پر اعتماد اتنا بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ظالم کی طرف جھکتا ہے, اس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے, تو اس کے اندر سے بھی, یعنی جب دیکھیں آپ ایک انسان کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ لیں, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, کوئی بھی ظلم ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے, یا اور کسی انسان پہ زیادتی کرنی ہے وہ بھی ظلم ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہمدردی کی جائے, یا ان کی طرف انکلائنڈ ہو, یا ان سے مدد چاہیے, تو کیا ہوگا, اپنے اندر سے بھی ایک تو کراہت نکل جائے گی, ناپسندیدگی نکل جائے گی اس چیز سے, ظلم سے جو کراہت ہونی چاہیے تھی, اور جو بجائے اس کی کہ آپ اس کو منع کرتے, تو آپ تو اس کی طرف ہی جھک گئے. اور جب انسان ایسے لوگوں سے راضی ہونے شروع جاتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو خود ہی برباد کر لیتا ہے, کیونکہ وہ پھر خود بھی اس کے اندر کیا پڑتا ہے ایک دن. اسی لیے اکرما رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ظالموں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو, اور قاضی بزازی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ شکل و صورت, چال ڈھال, فیشن, رہن سہن کے طریقوں میں فالو نہ کرو. یہ مطلب ہے اس کا یہاں پہ, کہ ذرا بھی ان کی طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. ظالموں کے ساتھ گہری دوستی یا یہ تعلق کرنا تو باہر کی باتیں, یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا جھکاؤ بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس بیٹھنے کو بھی منع کیا گیا. اور امام اوزائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے ایسے عالم پر جو اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے, سوائے اس کی کہ کوئی مجبوری ہو, یا لوگوں کی اصلاح کا, یا فساد ختم کرنے کا, اس کی بات کرنی ہو تو الگ بات ہے, کہ مگر ادروائز ظالم سے متاثر ہونا, اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کی مدد کرنا, یہ کوئی بھی چیز ان کے اندر سے, یہ تو خیر جھکنے سے بھی بہت زیادہ آگے کی باتیں, جھکنے میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کسی طرح بھی ڈھیلے پڑ جائیں ان کے سامنے, کسی طرح بھی ان کے سامنے گیو اپ کر دیں, لینینٹ ہو جائیں ان کے ساتھ کہ اچھا تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو, اچھا کوئی بات نہیں ہے. کہیں جاتا ہے ہماری محبتیں بہت ہوتی ہیں نا, تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, کیونکہ اگر محبت غالب ہو جاتی ہے نا آپ بائسڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ نہیں ہونا. ظالم کی طرح جھکنے سے بھی منع کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کے اوپر بس ہاتھ پھیر دیں ایک دفعہ, मारना नहीं उनको, बस एक दफा उनके ऊपर हाथ फेर दे बस, तो हम मान लेंगे आपके ऊपर। साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सोचा कि चलो अगर भाई इस तरह से ये मान जाते हैं तो इसमें तो कोई गरज नहीं है, ना इनके बुतों को अच्छा कहा ना कुछ, कुछ भी नहीं। अल्लाह तआला ने मना फरमा दिया, नहीं जालिमों की तरफ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। इंसान ये कहे कि नहीं, जो गलत काम है, जो हराम काम है, जो जुर्म का काम है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ी इसकी जो मतलब उसके लिए कोई नरम गोश अपने दिल में महसूस करें। अगर ऐसा तुमने किया फतमस्सकुम नार, तो वरना छू लेगी तुमको भी आग, अगर जालिम की तरफ थोड़े से भी झुके। और फिर अल्लाह तआला के सिवा तुम्हारे लिए कोई मददगार ना होगा, तुम मला तुम सरून, फिर ना तुम मदद दिए जाओगे। तो अब आप इन आयात से देखें कि क्या आपको मैसेज मिला कि एक तो कायम रहना है अपने दीन के ऊपर, फर्म रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, हाथ से नहीं गुजरना, और को कभी भी झुकाओ अपना जालिमों की तरफ नहीं करना। गलत लोगों की तरफ झुकने से मना किया गया, कॉम्प्रोमाइज करना उनसे या कोई भी उनकी तरफ उनसे लीनियंट होना, इससे बचना। तो अब हम खुद ही सोच लें कि हमें हक के ऊपर जमना है या हमेशा डामाडोल जिंदगी बसर करनी है, बेकहने के लोटे की तरह कभी किधर झुक गए कभी किधर, जिसने जो कह दिया बस उसके पीछे लग गए। आज दर्श सुन लिया तो बहुत दिन मुतासिर हो गया, तो आप बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर ली, अगले दिन सारा ही खत्म हो गया, एक दिन क्लास ले ली दिल पे असर हो गया, कह दिया आज तो हम बस स्टूडेंट बन गए, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, अगले दिन पता ही नहीं कहाँ जम जाए। जो मुसाफिर जम के चलता है, जो अपना रास्ता नहीं बदलता, कमिटेड होता है, एक ही रास्ते पर चलता है, वो मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो रोज रास्ते बदलता रहता है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। वापसी में सलात और कायम करो नमाज, ये चीज आपको हेल्प करेगी इस्तकामत में। क्या नुस्खा बताया गया, कायम करो नमाज पर फैन नहार, तरफ यानी किनारे दिन के। दिन के किनारे कौन से होते हैं, सुबह और शाम, यानी जो फजर का टाइम हो गया और बाद जमाने का असर का टाइम, क्योंकि उस वक्त दिन खत्म हो रहा होता है, वो उसका किनारा, और बाद में का मगरिब का टाइम। तो ये दोनों नमाजें होंगी, वज़ुल फ़म में नल्लई, और कुछ हिस्सा रात में से, रात का भी कुछ हिस्सा, जिसमें मगरिब इशा ले ली या इशा की नमाज ले ली। तो शुरू में तो आपको पता है ना कि पांच नमाजें फर्ज नहीं थी मक्की दौर में, 10.5 साल तकरीबन, उस वक्त लोग सुबह शाम की नमाज पढ़ते थे, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने के बाद, और ये भी है कि तहज्जुद की नमाज उस वक्त लाजम पढ़ी जाती थी। उसके बाद ये हो गया कि फिर तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने नफल कर दी और फिर अब फर्ज नहीं रही। उस वक्त तक अभी क्योंकि पांच इन नमाजों का फर्ज होना नहीं किया गया था, ये बाद में फर्ज हुई है ना, तो ये तो सन तकरीबन 1190 में हिराज पे पांच नमाजों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला था, तो उससे पहले इसी तरह नमाज पढ़ी जाती थी। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताया गया और सारी उम्मत को हुक्म दिया गया कि नमाज से मदद ले, और दूसरी चीज क्या, फिर भी इंसान कभी इंसान फिसल जाता है, कभी कोई कमी रह जाती है, तो उसका बताया गया इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, कभी कोई गलती भी हो जाए, कभी कोई गिर जाओ, कहीं फिसल जाओ, कोई ज्यादती कर बैठो, तो तब भी क्या करो, कोई नेकी कर लिया करो उसके पीछे। और इसलिए क्योंकि जो नेकी है वो ज्यादती को, जो गुनाह है, जो कमी रह गई है, उसको मिटा देगी। लेकिन जब इंसान कोई बुराई कर बैठता है ना, गुनाह हो जाता है, तो दिल परेशान हो जाता है, दिल के ऊपर एक अजीब सा डिप्रेशन होता है और बहुत ही दिल परेशान होता है। तो उस वक्त जब इंसान उठ के कोई नेकी का काम कर लेता है, तो दिल पे जैसे ठंडक सी पड़ जाती है ना, आप कभी करके देखें कि कभी होता है कि कभी इंसान में कोई गलत काम हो गया, इंटेंशनल या इनइंटेंशनल, इसके बाद में एहसास हुआ, तो आप क्या करें, अब इसको किस तरह से हम बदलें। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता ना, अब वक्त नहीं वापस आ सकता, अब क्या है उसका चाराकार, यहाँ तो डिप्रेशन ही रहे, परेशान ही रहे। तो अदरवाइज अल्लाह ताला ने क्या नुस्खा दे दिया इंसानों को, देखें इस डिप्रेशन से परेशानी से अल्लाह ताला ने निकाल दिया कि उसके बाद एक नेकी कर लिया करो। जब नेकी कर लोगे तो फिर वो दिल से जो गुबार है वो दूर हो जाएगा। और ये बात अहादीस से भी हमें मालूम होता है कि एक दफा जब उस्मान ने वजू किया, फिर फरमाया इसी तरह मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते देखा, और आपने फरमाया कि जो मेरे बाद इस वजू जैसा वजू करे, फिर दो रकत नमाज अदा करे, जिसमें अपने दिल से बातें ना करे, यानी बड़े खुशबू के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके जो नमाज पढ़ेगा, ऐसा अच्छी तरह वजू करके, मेरे वजू जैसा का मतलब ये क्या कि पूरी सुन्नतों को फॉलो करना है, अच्छे तरीके से वजू करना है, फिर दो नमाज रकत नमाज पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें नहीं करे, इधर उधर के ख्याल जैसी हमारी नमाजें होती है इस तरह की नहीं, अच्छी तरीके से नमाज पढ़े, तो इसके तमाम अगले गुना माफ कर दिए जाते हैं, जो उससे हो गया गलती हो गई है वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। इसी तरह एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे इस वजू जैसा वजू करे, तब आप इससे समझ जाएंगे कितना अच्छा वो वजू होना चाहिए, और खड़ा होकर जुहर की नमाज अदा करे, उसके सुबह से लेकर अब तक के गुनाह माफ हो जाते हैं, फिर असर की नमाज पढ़े तो जुहर और असर तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यानी जो बीच में इंटरवल में जो भी गुनाह हो गए वो माफ कर दिए जाते हैं नेक्स्ट नमाज से। तो नमाज एक नेकी है ना, नेकी का काम है ना, तो जो भी गलती हो जाए, नेकियों में भी बहुत सारी और नेकी है आप और भी कर सकते हैं, मगर उनके अंदर एक जो बहुत ही यानी नेकियों के अंदर जिसका मकाम बड़ा है वो है नमाज का मकाम। तो उस वक्त नमाज पढ़े इंशाल्लाह उन गुनाहों को माफ कर देंगे, और भी नेक काम कर सकते हैं, जैसे जिनमें रोजा भी हो सकता है, ज़कात भी हो सकती है, सदका भी हो सकते हैं, अच्छा अखलाक भी हो सकता है, किसी का अच्छा मामला भी हो सकता है, मगर याद रखे नमाज को इनमें सब नेक टॉप पे रख सकते हैं आप, अव्वलियत हासिल है, अफजल है सबसे। तो फिर आपने फरमाया कि फिर मगरिब की नमाज अदा करे तो असर से लेकर मगरिब तक के गुनाह बख्श किए जाते हैं, फिर ईशा की नमाज से मगरिब से ईशा तक के गुनाह माफ हो जाते हैं, फिर ये होता है नोट पोट होता है, फिर सुबह उठकर नमाज फजर पढ़ने में से ईशा से सुबह तक की नमाज के सब गुनाह बख्श किए जाते हैं, यही है वो भलाइयां जो बुराइयों को दूर कर देती है। तो ये नमाज जो है ना, इससे वैसे भी गुनाह माफ होते हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बताओ अगर तुम में से किसी के घर के सामने दरवाजे पे एक मिलत जा रही हो और वो इसमें हर दिन 5 मरतबा गुसल करता हो तो क्या इसके जिस्म पर जरा सा भी मैल बाकी रह जाएगा। लोगों ने कहा हरगिज नहीं। आपने फरमाया बस यही मिसाल 5 नमाजों की है कि इनकी वजह से अल्लाह ताला खताएं और गुनाह माफ फरमा देते हैं। तो आप जब आप नमाज पढ़ने जाए तो आप ये सोचिएगा कि मैं मेरे गुनाह माफ होने लगे, इस नमाज से मेरे गुनाह माफ होंगे। अल्लाह ना करे कहीं वो नमाज ही ऐसी ना हो जाए कि वो ही ना मुंह तो दे मारी जाए, ऐसी ना नमाज हो, मतलब अच्छी वाली नमाज आप जब पढ़ी है ना तो फिर आप ये सोच के अच्छी तरह नमाज पढ़ी कि मैंने इससे अपने गुनाह बख्शवाने हैं, ना कोई उल्टा ये नमाज ही मेरी शिकायत कर दे कि इसने मुझे अच्छी तरह नहीं पढ़ा था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं कि पांचों नमाजें और जुमा जुमा तक वन फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे तक और रमजान रमजान तक का कफारा है, एक रमजान से दूसरे रमजान तक के दरमियान जो गुनाह होंगे वो माफ हो जाते हैं। जब इंसान एक रमजान में भी रोजे रखता है और इबादत करता है फिर नेक्स्ट रमजान आ जाता है तो बीच में उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा फिर एक और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिस तरह तुमने रोजियां तकसीम फरमाई है अखलाक भी तकसीम फरमाया। अल्लाह ताला दुनिया तो उसे भी देता है जिससे खुश होता है और उसे भी देता है जिससे गजबनाक होता है, लेकिन दीन सिर्फ उन्हीं को देता है जिनसे उसे मोहब्बत हो, पर जिसे दीन मिल जाए तो यकीन अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। कितनी खुशकिस्मती की बात ना, इससे तो सारे खुश हो जाए। इनकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी जुबान मुसलमान न हो जाए, और बंदा ईमानदार नहीं हो जाता होता जब तक उसके पड़ोसी इसकी ईजाओं से बेफिक्र न हो जाए। लोगों ने पूछा ईजाओं में क्या है, फरमाया धोखा और जुल्म। सुनो जो शख्स माल हराम कमाए फिर इसमें से खर्च करे अल्लाह ताला उसे बरकत से महरूम रखता है, अगर वो उसमें से सदका करे तो कबूल नहीं करता। इतना कुछ अपनी बात बाकी छोड़ मरे वो सब उसके लिए आपका तोशा बनता है। याद रखो अल्लाह ताला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता कि बुराई को बुराई से, अब मिटाने को एक बुराई करी हराम पहले माल कमाया फिर उसके बाद आप सदका करने के लिए, तो चलो अब मेरा हराम माल शायद इससे ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा, वाइट नहीं होता वो, बल्कि क्या अल्लाह ताला बुराई को भलाई से मिटाता है। अगर उसको उसको इरेज करना है बुराई को तो उसका इरेजर क्या है, भलाइयां है। बुरी चीज बुरी से थोड़ी मिटेगी, वो सदका भी बुरा और वो कमाई भी बुरी है। वो चूंकि वो सदका जो है वो हराम से किया गया तो वो सदका जो है वो कबूल ही नहीं हुआ, इसलिए बुराइयों को भलाइयों से मिटाएं। और हमारे पास तो अच्छा मौका है कि हमने अल्लाह ताला ने जिंदगी की मोहलत दी है कि हम अपनी बुराइयों को मिटा सकते हैं। और एक और हदीस में आए दिन रात के जिस वक्त में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसके नामामाल में से बुराइयां मिट जाती हैं, यहाँ तक कि इनकी जगह वैसी ही नेकियां आ जाती हैं। और एक और जगह पे आता है मतलब में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुराई अगर कोई हो जाए तो उसके पीछे नेकी कर लो कि इसे मिटा दे और लोगों से खुश इखलाकी से मिला करो। और हदीस में है जब तुझसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके पीछे नेकी कर लिया कर ताकि इसे मिटा दे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह क्या ला इलाहा पढ़ना भी कोई नेकी है, पढ़ना भी नेकी है? आपने फरमाया वो तो बेहतरीन और अफजल नेकी है। तो आप अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ सकते हैं ना। आप आपकी की हालत हो जाती है कभी, या कभी कोई और माजूरी हो सकती है, कभी कोई हालात नहीं हो सकते, ऐसी ऐसी जगह पे वहाँ पे नमाज का इंतजाम नहीं हो पाता तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं। कोई भी नेकी करें आप लेकिन अपनी बुराई को मिटाने की कोशिश करें, खुद ही कोशिश करें कि मेरी बुराई मिट जाए। और नमाज जो है ना वो फिर सगीरा गुनाहों का कफारा बनती है। कबीरा गुनाहों के लिए ये है कि आपको फिर तौबा इस्तिगफार भी करनी पड़ती है, फिर आपको कई दफा कोई ऐसे गुनाह होते हैं जिनके अंदर आपको ने किसी का हक मारा होता है तो उसका हक भी उसको लौटाना पड़ता है, फिर तौबा कबूल होती है। तो लेकिन बाकी जो है वो नेकियां करने से माफ हो जाते हैं गुनाह, इसी तरह सदका वगैरह से भी गुनाह माफ हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी गुनाहों को वाइप आउट करते जाए। गुनाह तो इंसान से होते ही है, गलतियां तो होती ही रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी आपसे कोई गलती ही ना हो, अब बिल्कुल ही आप पाक साफ बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। मगर असल बात यह है कि इंसान से जब भी गलती हो तो इंसान अपनी गलती को रियलाइज कर ले, उसको पहचान ले और उसको मिटाने की कोशिश करे। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मुसलमान से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसको चाहिए कि वजू करके दो रकत नमाज नफल अदा करे तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। और इस नमाज को हम नमाज तौबा भी कई दफा कहते थे ना, तौबा के नफल आप कहते हैं, तौबा के नफल पढ़ लिया करें फिर फौरन। और यहाँ पे जहाँ पे आपने भी सलाह का माना है तो यहाँ पे सलाह से मुराद जो फर्जी नमाजें हैं वो भी आप ले सकते हैं जो अब आपके पास फर्ज हो गई हैं, कि उनको कायम करें। यानी क्या मतलब है कायम करने का, कि उनको पूरी पाबंदी इनकी करें, हमेशा पढ़ें। और दूसरा माना इसका क्या है कि उनकी जो आदाब है शराइत है जैसे वजू है खुशू है और सही तरह से सारे अरकान अदा करना है वो भी कायम करने में आ जाता है। और तीसरा माना क्या है कि उनको अफजल वक्त में अदा करने की कोशिश करें। अव्वल वक्त कौन सा है, जो पहला वक्त है या अव्वल वक्त है, ये सारी चीजें कामत सलाम में आती हैं। तो आप ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। लालिका जिक्र आले जाकिरीन, ये है एक नसीहत जिक्र करने वालों के लिए, याद रखने वालों के लिए, जो वाकई ही नसीहत लेना चाहते हैं, जो जिद्दी लोग नहीं है, जो हटसलन लोग नहीं कि उन्होंने करना वही है जो उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने बात नहीं किसी की सुननी, उनके लिए तो ये नहीं नसीहत है। मगर जो वाकई नसीहत लेना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम किसी तरह अपनी बुराइयों को मिटा दें, हम किसी तरह वाकई इस्तकामत इख्तियार कर लें दीन पे, जैसे अल्लाह का हुक्म है उस तरह से हम जम जाए, उनके लिए इसके अंदर बड़ी नसीहत है। और सबर करो, सबर करना भी यहाँ पे इस्तकामत के मानों में है। सबर करने का माना भी तो यही होता है ना, अपने आप को बांध लेना, रोक लेना अपने आप को। तो बांधना क्या है यहाँ पे, यानी दीन के ऊपर अपने आप को बांध ले, अपने नफ्स को काबू में रखे। और यानी यहाँ पे क्या मफहूम होगा फिर, कि नेक काम करने पे, दीन के काम करने पे अपने नफ्स को बांध के रखे, रोक के रखे, उसके ऊपर साबित कदम रहे। लेकिन नेकियां करने में भी तो आपको अपने नफ्स को काबू करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, वरना तो कोई नेकी नहीं आप कर सकते इस्तकामत के साथ। वो एक दिन आया, दिल चाहा, अगले दिन दिल नहीं चाहेगा, लेकिन जो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबर करना होगा और अपने आप को जमा के रखना होगा। नहीं दिल चाह रहा नमाज के लिए उठने का, नहीं उठूंगी मैं, इसके भी के लिए क्या करना है, सबर करना, ये भी सबर है। और फिर इस तरह जो मुखालिफीन है वो तकलीफ दे तो उसके ऊपर भी सबर करना है। तो जो यह तो फरमाया गया कि सबर करो, का इन्ना अल्लाह ला युदीउ अजर अल मुहसिनीन, कहीं नहीं जाता तुम्हारा अजर, अल्लाह तआला जाया नहीं करता नेकोकारों का अजर। जब तुम ये सारे काम करोगे, इस्तकामत इख्तियार करोगे, तत्वहू नहीं करोगे, तरकहू नहीं करोगे, तुम नमाज कायम करोगे, तुम अपनी सबर से काम लोगे, तो अल्लाह तआला तुम्हारा अजर जाया नहीं करेगा। फलौला काना मिनल कुरूनी मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन, फिर क्यों नहीं थे कौमों में जमानों में से तुमसे पहले उन्हों बकियत समझदार लोग, यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द इल्ला कलीला, कि जो रोकते फसाद थे जमीन में मगर थोड़े थे, मिन मन अंजैना मिन्हुम, उनमें से जिनको हमने निजात दी। अब देखें अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है कि जो बस्तियां ये जिनके ऊपर अजाब आए ना, इनमें से ऐसे लोग बहुत ही कम थे कि जिन्होंने लोगों को बुराइयों से रोका हो, उन्हीं को अल्लाह ताला ने समझदार लोग कहा है कि वो समझदार लोग हैं। कि जब लोगों में बुराइयां फैलती हैं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ हर जमाने में, तुमसे पहले जो जमाने गुजरे हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग बुराइयों से रोकते। बहुत ही अल्लाह तआला फरमाते ना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लोग बुराइयों से रोकते लोगों को, मगर बहुत कम लोगों ने रोका, बहुत थोड़े से लोगों लोग थे जो लोगों को फसाद करने से, बुराई करने से, ये जितना जैसे अब्दुल नाथपुर में कमी बेशी कर रहे हैं, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने बुराइयां की, तो ये लूत अलैहिस्सलाम ही थे सिर्फ मना करने वाले, बहुत ही कम। फिर उन जिनको अल्लाह तआला ने फिर निजात भी दे दी, उनमें से उस कौम में से उनको निकाल लिया था ऐसे लोगों को, और हमेशा कम क्यों रहे हैं? पिछली बस्तियों में कोई लोग ऐसे समझदार लोग क्यों नहीं होते थे कि लोगों को बुराई से रोकते? लेकिन अगर आप देखें तो आम तौर पे आज तक भी ऐसे खैर लोग जो लोगों को बुराई से रोके वो हमेशा कम ही होते हैं। खानदानों में भी आप देखें बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं कि जो कोई गलत चीज देखे तो वो कहें कि अच्छा नहीं इससे रुको, बहुत कम होते ना, कोई इक्का दुक्का होगा। बाकी सारे जो क्या होते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तवल्लजीना ज़लमू मा उत्रिफू फीही वकानू मुजरिमीन, पैरवी की उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया उनकी जो दौलत दिए गए उसमें और वो थे मुजरिम। सब लोगों ने किनको फॉलो किया, ये जो जालिम लोग थे इन्होंने किनको फॉलो किया, ये जालिम किस लिए बने, इसलिए कि इन्होंने एलीट क्लास को फॉलो किया सिर्फ। और ये सारे मुजरिम थे, एलीट क्लास को फॉलो करना क्या जुर्म है? ये असल बात ये है, जो एलीट क्लास जो थी ना बिगड़ी हुई थी, वो जालिम थी, और आम अवाम जो थी वो उनके पीछे चली, उन्होंने इन उलू बकिया को फॉलो नहीं किया, उन्होंने मुतरिफीन को फॉलो किया, जो उनके एलीट लोग थे उनको फॉलो किया। मुतरिफीन कौन है? जिनको नियमते ली गई, उनको फॉलो किया। देखिए हर माशरे में आज तक भी यही हो रहा है, अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो कि उनको फॉलो करना चाहते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो कामयाब बज़ाहिर दुनियावी तौर पे कामयाब नजर आने वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। यही ट्रेंड नजर आता है ना आपको, ऐसा ही होता है ना। कहाँ ऐसा होता है कि कोई बड़ा नसीहत करने वाला है और सारे लोग उसके पीछे चल पड़े और लोगों ने कहा वाह भाई आज तक तो हमें ये बात पता ही नहीं थी, आज हमें पता चली और हम सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। कहाँ ऐसा होता है, हमेशा से जमाना में ऐसा ही होता रहा और आज भी यही हो रहा है कि जो आम सोसाइटी है आपकी वो किसको फॉलो करती है। आज भी देख लें आप खुद ही अपना अपने आप से तरफ पूछें, इस कुरान को पढ़ने से पहले आप मुझे बताएं कि आप अपनी डेली लाइफ में किनको देखकर अपने कपड़े पहनते थे या अपनी शादी ब्याह करते थे या अपने दुनिया के काम कारोबार ये सब किनको देख के करते थे, किसको आप आइडियालाइज करते थे। अमीर लोगों को ना, जो कि एलीट लोग थे, जो सेलिब्रिटीज, जो बड़े बड़े मशहूर लोग, जो दुनियावी तौर पर बड़े कामयाब लोग नजर आने वाले, हालांकि कामयाबी और नाकामी का तो हमने देख लिया ना कौन है कामयाब और कौन है नाकाम। तो आम लोगों का यही ट्रेंड रहा है जिसको देख के आप सोचती थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनू ऐसे बनवा लू, कोई मैगजीन उठाया उसको देख लिया ये अच्छा इसने ये पहना अच्छा मैं भी यही, अच्छा ये ऐसी शादी हो रही है अच्छा मुझे भी अपनी शादी ऐसी करनी। और इसको क्या नाम हम देते हैं, बड़े ही खूबसूरत हमने नाम इसके रखे हैं, हम कहते हैं बड़ा इन है आजकल, आजकल ना ये बड़ा इन है। इन कहने से हलाल हराम बराबर हो जाते हैं हमारी नजर में, कोई चीज हराम भी है ना तो वो भी हलाल हो जाती है क्योंकि वो इन जो है वो इन किसकी इन होती है। और फिर ये हम कहते हैं ये ट्रेंड है आजकल, ये फैशन है आजकल, ये आजकल चल रहा है। आपको पता ये आजकल चल रहा है, अच्छा जुड़ी किसी ने अभी कहते ना ये आजकल चल रहा है, बस हम आपके लिए इतना ही कहना काफन हदीस आ गया। यही है ना हमारे मयार क्या है आज हमारे, क्या आप में से कोई ये देखता है कि अल्लाह तआला की इसमें मर्जी क्या है, या ये देखते हैं कि हाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है इस चीज में, मुझे ये बताओ। वो चीज है इन, हमारे लिए इन वो चीज होती है जो अमीर लोग करें, जो सोसाइटी के जाने माने लोग करें, जो बड़े बड़े जिनको हम कहते हैं बड़े लोग, बड़े लोग बड़े कहते ही हमारे बस दिल भी शायद रोज से भर जाते हैं, जो बड़े लोग करते हैं वो सब हम करना चाहते हैं, वैसी शादियां करना चाहते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं, वैसे ही अपने घर जाते हैं, वैसे ही अपना लिबास चाहते हैं, वैसे ही अपने एटिकेट चाहते हैं, वैसे ही अपनी बोल चाल चाहते हैं। ये तो उनकी बात हो रही है ना, पैरवी की उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, हमारे भी हम भी जालिम बनेंगे आज। मुतरफीन के पीछे जो चले वो मुजरिम थे, बाकी सोसाइटी भी मुजरिम हो गई। क्यों नहीं अल्लाह तआला ने फरमाया, क्यों नहीं ऐसे लोग उठते कि जो कि जिन्होंने लोगों को रोका हो इन चीजों से, मगर बहुत ही कम लोग ही उठे और लोगों ने जब उनकी बातें नहीं मानी तो अल्लाह तआला ने इनको फिर निजात दे दी। इसका मतलब क्या है कि हर सोसाइटी में ऐसे लोग होने चाहिए ताकि कम अज कम वो बरीन जिमा हो जाए। देखिये अल्लाह तआला ने उनको निजात दे दी, फिर वो बरीन जिमा हो जाए, उन्होंने कह दिया उन्होंने अपना काम किया, मगर हमेशा ऐसे लोग कम क्यों होते। एक तो वैसे ही उनकी तादाद कम होती है, या फिर ये होता है कि अगर कोई हो भी तो उसको इतनी जरूरत ही नहीं होती कि वो कुछ बोल सके। आप देखा खानदानों में आप देखते होंगे कई दफा कई गलत काम होते, मगर आप कहते हैं कि अच्छा सारी अगर एक तरफ है मैं अकेली क्या बोलू, आप खामोश हो जाते हैं, डर की वजह से खामोश हो जाते हैं। अब मैं इतने सारे लोगों का कैसे फेस करूंगी तो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो खैर की बात, फसाद को खत्म करने की बात, बुराई को से मना करने की बात बहुत कम लोग ही करते हैं, दूसरों को समझाने की हिम्मत बहुत कम होती है। चाहे अब ये मुतरफीन जो है अपने आप को मुसलमान ही क्यों ना कहते हो, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چل رہے ظالم ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنی نعمتیں اتنی سہولتیں اتنے عیش و آرام کس لیے دیا تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بنتے، لیکن وہ اللہ کے اور نافرمان ہو گئے اور ان کے پیچھے ساری سوسائٹی بھی چل پڑی. کیونکہ لوگ انہیں چیزوں میں کھو جاتے ہیں نا، دنیا میں ڈوب جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم اور اس کی بات بھی آپ کو دو گروہ نظر آ رہے ہیں، ایک اولو بصیرہ ہے اور ایک مترفین ہے. پیچھے آپ نے شفیق کا پڑھا اور صحیح کا پڑھا، اب یہ بھی آمنے سامنے ہے. آپ اس پوری صورت کا ہی یہی دیکھیں گے طریقہ چلا ہے، دو گروہوں کی بات ہر جگہ. انشاءاللہ ان دا اینڈ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور ہر جگہ آپ دو گروہوں کی بات دیکھ رہے ہیں. لوگوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کم لوگ دین کی طرف بلانے والے تھے، لیکن پھر سٹل ہم امپریس کس سے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حق کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ کس کا ساتھ دینے پہ تیار رہتے ہیں؟ جس کی طرف میجورٹی ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں اتنے سارے لوگ پاگل تھوڑی ہو سکتے ہیں، اتنے سارے لوگ آپ پھر اس طرف چل رہے ہیں، وہ کوئی پاگل؟ اور یہ کیا دو چار لوگ بس اپنی جوڑی سے مسجد بنا کے کھڑے ہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، سب ہی اس طرف چلو، سب جس طرف چل رہے ہیں اس طرف چلو. اگینسٹ دا سٹریم سوئم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے نا، پانی کے مخالف تیرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. سب ایک طرف جا رہے ہیں آپ دوسری طرف، تو یہ سارا بہاؤ تو اگر جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو ادھر بیٹھتے چلے جائیں گے. آج اگر آپ کسی ایک فیملی کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ان کے اندر کتنے ہیں جو برائیوں سے روکنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو برائیوں میں پڑنے والے ہیں. کسی سوسائٹی میں دیکھ لیں کتنے ہیں جو دین کو پہ چلنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو دین سے دور صرف علی کلاس کو فالو کرنے والے ہیں. اندھا دھند فالوئنگ، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے وہ کنویں میں بھی گرنے جا رہے ہوں نا، تو ساری سوسائٹی کہے گی کہ ہم بھی کنویں میں گریں گے، کیونکہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں. کتنی حقیقت کھول کے بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. یہ آپ دیکھیں کہ جو مترفین ہیں اتنی محنتیں پانے کے باوجود، اور جو ان کو فالو کرنے والے بھی ہیں اتنی محنتوں کے باوجود بھی، حال کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی کم اتنا ماشاء اللہ، مگر اکثر جو عیش و آرام میں عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں لوگ نمازوں سے غافل، اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے غافل ہوتے ہیں، نہ آئندہ نسلوں کی فکر، نہ کوئی حساب کتاب کا ہوش، نہ کوئی فرصت. سوسائٹی میں ایسے لوگ ہی پھر عام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ امیر کلاس جو ہے وہ اس چکتی تو دوسرے لوگوں کو بھی دین کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور آپ آج خود ہی دیکھ لیں، آج مثال کے طور پہ آپ اتنی جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ان کے علاوہ کتنے سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہی ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ابھی جتنے بیٹھے ہوئے وہ بھی فل ایفرٹ نہیں لگا رہے دین کے راستے میں، تو کب جا کے وہ وقت آئے گا کہ وہ آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ اٹھیں اور اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے بنے اور خود پھر بری ذمہ ہو اس چیز سے، پہلے خود سیکھیں پھر دوسروں تک پہنچائیں، پہلے خود آپ اس چیز کو سمجھیں کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے، پھر دوسروں کو روکنے والے بنے. وہ وقت پھر کب آئے گا؟ ماں خانا ربو کل یوگ نکل کو رابی ظلم، یاد رکھیں یہ ایک رول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو ظلم کے ساتھ. کہ وہ تو بےچارے بڑے اچھے نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا، ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، ان کے اوپر مصیبت آ گئی، کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. तो हम अपने नाते से जब हमें इल्म नहीं होता ना तो यूं ही कह दिया करें कि हाय इनके साथ बेचारा हूँ, हाय ये ऐसे क्यों हो गया, हाय बेचारे इतना तो नहीं उनका कसूर था। नहीं, आपको नहीं मालूम, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, बस आपको इस चीज का यकीन होना चाहिए। जब जो उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले, तो हमें ये रूल पता चल गया कि अगर किसी सोसाइटी में इस्लाह का काम होता रहता है ना, कुछ लोग समझाने वाले रहते हैं, कुछ लोग लोगों को मना करते रहते हैं बुराइयों से, नेकियों की तरफ लाते रहते हैं, तो बहुत सारी सोसाइटी अल्लाह ताला के अजाब से बच जाती है। लेकिन जब ऐसे लोग ही उसमें खत्म हो जाए, क्योंकि जब लोग बुराई की तरफ सभी चलने लगते हैं ना, तो उनको बड़े बुरे लगते हैं ऐसे लोग जो मुस्लिम होते हैं, इस्लाह करने वाले जो होते हैं, वो कहते हैं तुम भी ये काम छोड़ो और हमारे साथ ही चलो, क्योंकि वो गिल्टी फील करते हैं ना कि ये अब अगर बुराइयों को हाईलाइट करने लगे तुम्हारी तो बुराई खुल जाएगी, सबको पता चल जाएगा, अभी तो एक हमाम में सारे ही नंगे। जिस सोसाइटी में ऐसे लोग हो, इसलिए होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो लोगों को मना करता रहे बुराइयों से और भलाइयों की तरफ बुलाता रहे। अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, सब एक उम्मत बनते, सारे एक होते। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, और हमेशा रहेंगे इख्तलाफ करने वाले। लेकिन अल्लाह ताला ने एक उम्मत नहीं बनाया सबको। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा जुर्म हो गया, अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत भी नहीं चाहिए थी। हाँ, अल्लाह चाहता तो ऐसे हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको चॉइस दी है ना, फिर आजादी ना रहती ना। अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती सबको एक ही बन, फिर आजादी क्या रहती? अल्लाह ताला ने सबको आजादी दी, चाहो तो बुराई करो, चाहो तो भलाई करो। इसीलिए सब ने अपने अपने रास्ते को चूज कर लिए, कोई बुराई की तरफ इंक्लाइंड होगा, कोई भलाई की तरफ चल पड़े। ये ऐसे ही है कि जैसे आप देखें एक एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर होता है ना, एग्जामिनर होता है, तो वो देख रहा है कि स्टूडेंट गलत लिख रहा है, लेकिन वो उसको मना नहीं करता। ये नहीं उसको पसंद है कि ये जरूर लिखे, बड़ी अच्छी बात है लिख रहा है, नहीं, इसलिए कि इसने आजादी दी हुई है। इस वक्त इम्तिहान का टाइम है, इस वक्त उसने छोड़ दिया इसके ऊपर कि जो चाहे ये लिखे। जब इम्तिहान का टाइम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट का टाइम आएगा, तब वो उसको बताएगा ये तुमने गलत लिखा था। उसने उसको पढ़ाया होगा, उसको बताया होगा पहले, लेकिन इस एग्जाम के टाइम पे वो उसका हाथ नहीं रोक रहा। यही बात बिल्कुल समझे कि अल्लाह ताला इस वक्त इसलिए आजादी सबको दी गई है क्योंकि उसने ये इम्तिहान का वक्त रखा है, ये अमल का वक्त है, इसलिए वो जबरदस्ती किसी को नहीं रोकता। लेकिन ये उसकी चाहत नहीं है, उसका शौक नहीं है कि लोग बुराइयां करें। इल्ला मा रहिमा रब्बुक, मगर जिस पर तेरा रब रहम करे वो फिर उल्टे रास्ते पर जाने से बच जाता है। वो नबियों को फॉलो करने वाले जो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने चाहता तो सारों को एक ही बना देता, लेकिन उसने आजादी दे दी। इसी वजह से लोग हमेशा, लोगों को आप देखेंगे वो डिफरेंट रास्ते अपनाएंगे, हर एक अलग अलग अपने रास्ते पर चलेगा, मगर जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे कि उसको हिदायत मिल जाए वो इस तरफ आ जाए। वाली इजाले का खला कहो, और इसीलिए उसने पैदा किया उनको, किस लिए? हो सकता है कि यहाँ पे रहमत की तरफ इशारा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला की रहमत से लोग फायदा उठाए, इसीलिए उसने पैदा किया था, मगर उन्होंने रहमत से तो नहीं फायदा उठाया, वो उल्टा ही रास्ते पर चल पड़े। रहमत के जो रास्ता था उसको छोड़ के वो अलग रास्ते पर चल पड़े। और दूसरा भी इसका माना हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तो उनको इसीलिए पैदा किया था कि इन लोगों से इम्तिहान लिया जाए। وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی کہ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے, سب کے سب۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی بات ہے کہ کیا پوری ہو گئی, یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اتنے ہٹ دھرم اور ضدی ہوں گے کہ وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے, وہ نہیں مان کے دیں گے, ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह तआला ने जहन्नम रखी है और उसको वो भर देगा इन्हीं इंसानों से और जिन्नों से। बुखारी और मुस्लिम में आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम दोनों आपस में, दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई। जन्नत ने कहा मुझ में तो सिर्फ ज़ईफ और कमजोर लोग ही दाखिल होते हैं, और जहन्नम ने कहा कि मैं तकब्बुर और जुल्म करने वालों के साथ मखसूस की गई, यानी मेरे अंदर वो लोग आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया तू मेरी रहमत है, जिसे मैं चाहूँ उसे तुझसे नवाज दूंगा, और जहन्नम से फरमाया तू मेरा अजाब है, जिसे मैं चाहूँ तेरे अजाब के जरिए इससे इंतकाम लूंगा। तुम दोनों पूर्ण हो जाओगी यानी भर जाओगी। जन्नत में तो बराबर व्याप्ति रहेगी यानी और भरती जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसके लिए एक नई मखलूक पैदा करेगा और उसे उसमें बसाएगा। और जहन्नम में बराबर व्याप्ति, जहन्नम भी बराबर व्याप्ति तलब करती रहेगी, कहती रहेगी बार बार हल मिन मजीद और है और लेकर आओ और लेकर आओ और लेकर आओ, हत्ता कि फिर अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक रख देगी उससे, तब वो कहेगी तेरी इज्जत की कसम अब बस कि अब मैं भर गई, वरना वो मानती रहेगी हल में मजीद और है और लाओ, उसका पेट नहीं भरेगा जब तक अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक न रख। तो इस जहन्नम को तो अल्लाह ताला भर देंगे फिर ऐसे ही लोगों से। फिर अल्लाह ताला की बात पूरी हो गई कि कुछ लोगों ने जाना ही, उन्होंने अपना नसीब लिख ही लिया कि हमने जहन्नम में ही जाना है, वो उस रास्ते को छोड़ेंगे ही नहीं जो जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने तो अपनी रहमत के लिए लोगों को पैदा किया था कि लोग अल्लाह की रहमत के अंदर आए, लेकिन उन्होंने अपने लिए खुद ही जहन्नम को चूज किया, तो अल्लाह ताला भर देगा उसके जहन्नम में कोई कमी नहीं है, वो इन लोगों को फिर उसमें भर देगा। रसूल और हर एक को हम बयान करते हैं आप पर रसूलों की खबरों में से, हम आपके ऊपर रसूलों की खबरों में से हर एक की खबरें हमने आप पे बयान की है। देखिए आपने कितने किस्से अभी तक पढ़े हैं ना। मान सदू तो भी फुआदा का, जो हम मजबूत करते हैं साथ इसके तेरे दिल को, आपके दिल को हम इन वाकयात को बयान करके मजबूत करते हैं। किस तरह से? क्योंकि जब एक इंसान परेशान हो तकलीफ में हो तो आप उसके पास जाते हैं ना, तो आप कहते हैं अच्छा फलां भी तकलीफ में था लेकिन पता है उसके साथ क्या हुआ, इतना अच्छा फिर उसका अंजाम हुआ ना, इतने अच्छे उसने दिन देखे। आप किसी को बताते ना कोई दुखी हो या कुछ हो तो आप कहते हैं हाँ फलां के ऊपर भी ये दुख आया था लेकिन उसके बाद उसको इतने अच्छे दिन मिले तो उसको कितनी तसल्ली होती है। तो इसी तरह ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तसल्ली दी जाती, दिल मजबूत किया जा रहा है कि देखिए आपसे पहले भी जो पैगंबर आए थे कैसे कैसे हालात उन्होंने फेस किए लेकिन अंजाम फिर किसका अच्छा हुआ, बिला आखिर कौन कामयाब हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो भी लोग आएंगा ये काम करेंगे तो फिर वो याद रखें कि उनको हमेशा इस रास्ते में कोई आपके लिए फूलों के हार नहीं लेके खड़ा हुआ कि आपको बड़े हार डाल दे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत रुकावटें भी आती हैं, बहुत बातें भी, बहुत मुखालफतें भी आपको सहनी पड़ती हैं, तो इसमें दिल को छोटा नहीं करना। जो दिल को छोटा करके भाग जाते हैं वो कभी नहीं ये काम कर सकते। इस रास्ते में जो भी मुश्किल आए इन लोगों की वाकयात से आपने हमेशा सबक लेना, यही आपको हमेशा हौसला देते रहेंगे। और आ गया तेरे पास इसमें हक और नसीहत और याद दहानी ईमान वालों के लिए, सभी के लिए इसके अंदर याद दहानी है, नसीहत है, सारे मोमिनों के लिए भी जो बातें आपसे कही जा रही है ना, ये सभी के लिए नसीहत भी है, सभी के लिए वाज है, सबको इसके अंदर कुछ सबक मिलेगा। अकुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम, और कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते कि अमल करो अपनी जगह पे, अगर तुम ईमान नहीं लेकर आते मेरी बात नहीं समझ रहे तो तुम अपनी जगह अमल करते रहो, इन्नामिलून बेशक हम अमल करने वाले हैं, हम भी अमल करते जा रहे हैं, हम भी करते जाते हैं। आखिरी बात कह दी ना कि मेरे साथ जो तुम दुश्मनी करना चाहते हो फिर करते हो, कर गुजरो, मैं अपनी जगह अमल करता रहूंगा। वन तजीरू और इंतजार करो, इन्ना मुंतजिरून बेशक हम भी इंतजार करने वाले हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाती वल अर्ज, और इंतजार किसका कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान कोई फैसला कर दे या फिर कोई अजाब आ जाए। और अल्लाह ही को मालूम है गैब आसमानों और जमीन का, अल्लाह के लिए ये है, ये जो लोग दावे करते हैं ना कि हमें गैब की बातें मालूम है ये झूठ है, अल्लाह ताला कोई मालूम है गैब आसमानों और जमीन का, इन्हें ही जो अमर और उसी की तरफ लौटाए जाते हैं सारे मामलात जो हैं वो उसकी तरफ, लोगों के जो आमाल है ना वो अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, उसकी तरफ वापस लौटते हैं जाते हैं, और बाकी भी सारी जो रिपोर्ट है सब मामलात उसकी तरफ लौटाए जाते हैं। तो तुम क्या करो, फअबुदहू वह तवक्कल अलैह, तुम दो काम करो, सिर्फ उसी की इबादत करो और उस पर भरोसा करो, इबादत अल्लाह के हक में کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اس کی صرف عبادت کی جائے, اور اس کام میں اللہ کے راستے میں جو کام کرنا ہے اس پر اسی سے بھروسہ کیا جائے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. ہمیں کسی کے بھی عمل کی خبر رکھنے کی یا کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور ہم بس جاسوسیاں کرتے رہیں کہ اس نے کیا کیا, اس نے کیسے کیا, چھپ چھپ کے لوگوں کے پو لگاتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ سب کی خبریں رکھے, ہمارا کام نہیں خبریں رکھنا. اور پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, میں کوئی نگہبان تھوڑی ہوں تمہارا, میں تمہارا کوئی نگران ہوں, نگرانی کرتا رہا. یہ ایک دن کے کام کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے, وہ لوگوں کی نگہبان نہیں ہے, اس کا کام صرف لوگوں کو بتا دینا, لوگوں سے نگہبانی کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. سارے عمل اس کے سامنے جب پہنچائے جاتے ہیں اس کو سب کی خبر. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کی عبادت کریں اور اس پر بھروسہ کریں. ذاتی زندگی میں اللہ کی عبادت, اور دین اور دنیا کے معاملات میں اس پر بھروسہ. یہ اقوام اپنے کرنے کے کاموں پر نظر رکھے, نہ کہ دوسروں کے اعمال پہ. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے. الحمدللہ یہاں تک سورہ مکمل ہوئی. اور پوری سورت میں آپ نے دیکھیں, اگر آپ شروع سے اس سورت کو ایک سٹریچ میں دیکھیں گے نا, تو پوری سورت میں آپ کو ایک بات غالب نظر آئے گی. وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس دنیا میں اس وقت بھی, پہلے بھی, آج تک بھی, آئندہ بھی دو گروہ رہیں گے. پہلے بھی رہے تھے, اب بھی رہیں گے. ایک حق پہ اور دوسرا حق پہ نہیں ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے, ایک آیت آئی تھی پہلے, ایک اندھا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے, ایک بہرا ہے اور دوسرا سننے والا ہے. پھر اب ہم نے یہ پڑھا کہ ایک بلیسڈ ہے, ایک خوش بخت ہے, ایک بد بخت ہے. اگر ایک سمجھدار ہے, انہیں بطیع ہے, اور ایک مترفین ہے, تو یہ سب کیا بتاتا ہے؟ آج یہ بستیاں تو گزر گئیں جو ان کے لوگ نہ حق پہ تھے, کوئی حق پہ تھے. آج وہ لوگ بھی گزر گئے, ان کے زمانے گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ دو گروپس کو آمنے سامنے کر کے کھڑا کر دیا. اور آج ہماری مہلت عمل ہے, ہمارا ٹائم ہے عمل کرنے کا, یا ہم نے اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کرنا ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ہم اندھے من بھی جینا چاہتے ہیں یا ہم دیکھنے والے بننا چاہتے ہیں, ہم بہرے بننا چاہتے ہیں یا ہم سننے والے بننا چاہتے ہیں, ہم شکیل بننا چاہتے ہیں یا ہم صحیح بننا چاہتے ہیں, ہم انہیں بقیہ دن بننا چاہتے ہیں یا ہم اللہ دینا ظلم بننا چاہتے ہیں, مجرم بننا چاہتے ہیں. اور شروع سے بھی آپ اس صورت کو, اگر اس پارے کو شروع سے بھی آپ نکالیں, تو تب بھی آپ کو وہاں پہ بھی دو گروہ نظر آتے ہیں. ایک وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی محنتیں کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت کا مزہ چکھایا, پھر ان سے رحمت کو چھین لیا, تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اور دوسروں کا بھی کیا کام ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں, عمل صالح کرنے والے ہیں؟ آپ ہر جگہ یہاں پہ دیکھیں گے دو دو گروہوں کا ذکر ہے, اور ان دونوں کو ہم نے سامنے کر کے ان کی کیفیت کھولی گئی. اور آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ باطل کے ساتھ میجورٹی ہے اور حق کے ساتھ مائنورٹی ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے فتح کس کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کے رکھ دیے, الگ الگ کر کے رکھ دیے, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے. آپ قوموں میں بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے چھانٹ دیا, چاہے کتنا ہی وقت وہ اپنی نافرمانیوں میں لگے رہے. 950 سال اگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیے, تو اس کے بعد ایک دن بعد کا بھی آیا, 950 سال کے بعد 951 بھی تو آیا نا. 950 سال جب گزر گئے تو پھر وہ ایک دن جو عذاب کھایا وہ کس قدر شدید تھا. جب اللہ کی پکڑ آتی تو وہ بہت شدید ہوتی ہے, چاہے اللہ کسی کو کتنی ڈھیل دے دے, مگر اس نے الگ الگ کرنے ہیں, وہ الگ کر کے رہے گا اور دکھا دے گا اس دنیا میں بھی. لوگوں کے ڈفرنس آپ کو اس دنیا میں ہی پتا چلنے لگتے ہیں, ग्रोह आपको वाजे नजर आते हैं हर सोसाइटी में, अब आप किन में शामिल होते हैं, उन्हीं के मुताबिक फिर अंजाम होगा। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين۔ اب ان شاء الله تعالى ہم اس کی تلاوت سنیں گے انہی آیات کی۔
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم أقسم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك